लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dedichiamo la catechesi di oggi alla preghiera dei giusti. Il disegno di Dio nei confronti dell'umanità è buono, ma nella nostra vicenda quotidiana sperimentiamo la presenza del male.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज की धर्म शिक्षा में हम धर्मियों की प्रार्थना पर चिंतन करेंगे। ईश्वर की योजना मानव के लिए अच्छी है, लेकिन हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बुराई को पाते हैं। इसे हम अपने रोज दिन के जीवन में अनुभव करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय हमें मानव के कार्यों द्वारा पाप के विस्तार का जिक्र करता है। आदम और हेवा ने ईश्वर के अच्छे विचारों पर संदेह किया। उन्हें अपने में ऐसा लगा कि ईर्ष्यालु ईश्वर, जो उनकी खुशी नहीं चाहते, उनसे उनका क्या वास्ता। अतः वे उनके विरुद्ध बगावत करते। वे सृष्टिकर्ता के उदारता में विश्वास नहीं करते, जो उनकी खुशी चाहते हैं। उनका हृदय बुराई की ओर झुकता और वे सर्वशक्तिमान होने के इस विचार से भ्रमित हो जाते हैं कि यदि वे वृक्ष का फल खाएंगे तो ईश्वर की तरह हो जाएंगे। यह एक प्रलोभन है, एक महत्वाकांक्षा जो उनके हृदय में प्रवेश कर जाती है, लेकिन इसका परिणाम ठीक उल्टा होता है। उनकी आंखें खुल जाती और वे अपने को नंगा, सभी चीजों से वंचित पाते हैं। संत पापा ने कहा कि हम इस बात को ना भूलें कि प्रलोभन की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह बुराई द्वितीय पीढ़ी के साथ और भी गहरी होती जाती है, जिसे हम काइन और हाबिल की कहानी में सुनते हैं। काइन को अपने भाई से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या एक कीड़ा के समान है। यद्यपि वह ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु वह हाबिल को प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, मानो वह उसकी प्रधानता को कम कर रहा हो। बुराई काइन के हृदय में पनपती है और वह उसे दबाकर नहीं रख सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
comincia il male a entrare nel cuore. I pensieri sono sempre di guardare male l'altro.
बुराई का हमारे हृदय में प्रवेश करते ही हम दूसरों को सदा बुरी निगाहों, शक की नजरों से देखने लगते हैं, और यह इस हद तक पहुंच जाती है जहां हम सोचते हैं, यह दुष्ट है जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। यह हृदय में प्रवेश कर जाती और इस तरह सृष्टि के प्रथम भाइयों में हम हत्या को देखते हैं। काइन की संतति में शिल्प और कलाओं का विकास होता है, लेकिन हम हिंसा को भी बढ़ता हुआ पाते हैं, जो लामेक के प्रतिशोध गीत में प्रकट होता है। मैंने उस पुरुष का वध किया, उस नवयुवक का, जिसने मुझे मारा था। यदि काइन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लामेक का 70 गुना। बुराई जंगली आग के समान फैलती है और सारी चीजों को अपने आगोश में कर लेती है। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में कितने बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस भांति नूह का जल प्रलय और बाबुल का मीनार हमें ईश्वर द्वारा एक नई सृष्टि, नई शुरुआत की ओर ध्यान आकृष्ट कराता है, जो यीशु ख्रिस्त में अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। संत पापा ने कहा,
Eppure in queste prime pagine della Bibbia sta scritta anche un'altra storia, meno appariscente, molto più umile e devota, che rappresenta il riscatto della speranza.
इन सारी चीजों के बावजूद धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम पृष्ठों पर एक दूसरी कहानी हम अंकित पाते हैं जो अपने में अधिक नम्र और समर्पित है, जो हमारा ध्यान आशा में मुक्ति की ओर कराती है। यद्यपि आधे से अधिक लोग अपने में दुष्टतापूर्ण कार्य करते, अपने जीवन के द्वारा घृणा का प्रचार प्रसार करते और मानव के कार्यों से विजयी हासिल करने की चाह रखते हैं, वहीं कुछ एक सुयोग्य जन हैं जो अपनी निष्ठा में बने रहते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे मानव इतिहास को अपने में दूसरे तरीके से सजाने की क्षमता रखते हैं। हाबिल ईश्वर को अपने प्रथम फल का बलिदान अर्पित करता है। उसकी मृत्यु के उपरांत आदम और हेवा को तीसरा पुत्र सेत प्राप्त हुआ और सेत से एनोस उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ नश्वर है। उस समय से लोग प्रभु के नाम की दुहाई देने लगे। इसके बाद हानोक उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ ईश्वर के साथ चलना है, जिसका अपहरण स्वर्ग की ओर कर लिया गया। इसके बाद हम नूह की कहानी सुनते हैं, जो एक धर्मी व्यक्ति था। वह ईश्वर के साथ चलता था। नूह के सामने ईश्वर ने अपनी सृष्टि को नष्ट करने की घोषणा की। इन कहानियों को पढ़ते हुए एक व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है कि प्रार्थना मनुष्य का ईश्वर में पनाह लेना है, जो जल प्रलय से पहले की स्थिति बयां करती है। यदि गौर किया जाए तो हम स्वयं के बचाव हेतु प्रार्थना करते हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु कृपया मुझे बचाइए, मेरी महत्वाकांक्षा से, मेरी प्रबल इच्छाओं से मुझे स्वयं से बचाइए। धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम पन्नों की प्रार्थनाओं में मानव को शांति के स्थापक स्वरूप पाते हैं। वास्तव में प्रार्थना जब सत्य को अपने में धारण करती, हिंसा से स्वतंत्र होती और ईश्वर के चेहरे को निहारती है, तो यह मानव के हृदय की देख रेख हेतु अभिमुख होती है। कलीसियाई धर्म शिक्षा इसे कहती है।
Questa qualità della preghiera è vissuta da una moltitudine di giusti in tutte le religioni.
प्रार्थना का यह गुण सभी धर्मों के धर्मी लोगों द्वारा जिया जाता है। प्रार्थना उन स्थानों में फूलों की क्यारियां उत्पन्न करती है जहां मानव की घृणा मरुभूमि स्वरूप विस्तृत है। प्रार्थना अपने में शक्तिशाली है, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति को आकर्षित करती है और ईश्वरीय शक्ति सदैव जीवन का स्रोत बनती है। यह ईश्वर का जीवन है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर का अधिपत्य नर और नारियों की श्रृंखला में फैलता जाता, जिसे बहुधा ना समझी का शिकार होना पड़ता या यह दुनिया के हाशिए में ढकेल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ईश्वरीय शक्ति के कारण दुनिया का विकास होता है और हम इसके लिए ईश प्रजा का धन्यवाद अदा करते हैं, जो प्रार्थना की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रार्थना में व्यक्ति जो कड़ी हैं, जो अपने में उपद्रवी नहीं हैं, जो अपने को सुर्खियों में नहीं लाते, यद्यपि वे अपने में अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विश्व को विश्वास से पोषित करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने एक महत्वपूर्ण सरकारी व्यक्ति की यादों को साझा करते हुए कहा कि उसके हृदय में धर्म के प्रति कोई भी आस्था नहीं थी, लेकिन एक बच्चे के रूप में उसने अपनी दादी को प्रार्थना करते हुए देखा था, जो उसके हृदय में अंकित था। जीवन की कठिन परिस्थिति में वह अपने हृदय में अपनी दादी को प्रार्थना करते हुए याद करता और अपनी दादी के शब्दों में प्रार्थना करते हुए यीशु ख्रिस्त को अनुभव करता है। प्रार्थना सदैव हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। संत पापा ने कहा,
e tanti uomini e donne che pregano, pregano, seminano vita. La preghiera semina vita.
बहुत से नर और नारियां जो प्रार्थना करते और केवल प्रार्थना करते हैं, जीवन को बोते हैं। प्रार्थना जीवन का विकास करती है और इसी कारण हमें बच्चों को छोटी प्रार्थना करने हेतु सिखलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए दुखदायी होता है जब मैं यह देखता हूँ कि बच्चों को क्रूस का चिन्ह बनाने को कहा जाता और वे उसे नहीं जानते हैं। आप उन्हें अच्छी तरह क्रूस का चिन्ह बनाने हेतु शिक्षा दें, यह पहली प्रार्थना है। आप उन्हें प्रार्थना करना सिखलाएं, वे उसे शायद भूल भी जाएं, लेकिन यह उनके हृदय में अंकित रहता है, क्योंकि यह जीवन का बीज है। ईश्वर का मार्ग इतिहास में मानव को अपने में सम्माहित करता है, जहां वे मानव के साथ नियमों में नहीं वरन उनके हृदय की कोमलता में निवास करते हैं। यह हमें प्रार्थना करने हेतु मदद करता है, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर के द्वार को खोलती है, हमारे पत्थर दिलों को मानव हृदयों में परिवर्तित करती है। हमें मानवता की जरूरत है और मानवता के संग हम अच्छी तरह प्रार्थना करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Et sanctum usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui facit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार 31 मई को संत पापा फ्रांसिस वाटिकन महागिरजा घर में लोक धर्मियों की भागीदारी के बिना ख्रिस्त याग अर्पित करेंगे। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने मंगलवार को सूचना दी कि संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजा घर में रविवार 31 मई को स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे पेंतेकोस्त का समारोही ख्रिस्तयाग अर्पित करेंगे। इसके तुरंत बाद दोपहर 12 बजे संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजा घर के सामने अपने निजी अध्ययन कक्ष की खिड़की से विश्वासियों के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ फिर से शुरू करेंगे। विश्वासी सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक उपायों का सम्मान करते हुए संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित रहेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण 8 मार्च से संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितिक भवन की लाइब्रेरी से देवदूत प्रार्थना और आम दर्शन समारोह का संदेश देना शुरू किया था। तब से संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद खाली पड़े संत पेत्रुस प्रांगण को अपने निजी अध्ययन कक्ष की खिड़की से बाहर देखना और विशेष आशीर्वाद देना जारी रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन ISC ने अ सेफ चर्च एक सुरक्षित कलीसिया नामक एक नई वेबिनार श्रृंखला की घोषणा की, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से पीड़ितों तक सुरक्षा कर्मी कैसे पहुंच रहे हैं। 29 मई को शुरू होने वाली वेबिनार की एक नई श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन अपेक्षित कोविड-19 की बंदी के बावजूद कैथोलिक कलीसिया और अन्य विश्वास आधारित संगठनों को सुरक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन प्रति वर्ष बाल संरक्षण के विषय पर ज्ञान और अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए कलीसिया के प्रतिनिधियों, पेशेवरों और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। 26 मई को जारी एक प्रेस बयान में ISC लिखता है कि आगामी वेबिनार अ सेफर चर्च की श्रृंखलाओं में पहला शीर्षक है अ सेफर चर्च, जिसका उद्देश्य पेशेवरों द्वारा वर्तमान महामारी की परिस्थिति में और सामान्य समय में सुरक्षित रखने के लिए अच्छे अभ्यास को साझा करते हुए सुरक्षित करने में सक्षम बनाना है। प्रत्येक वेबिनार में आईएससी लाइव चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र के लिए विभिन्न सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करेगा। उधर डबलिन के महाधर्माध्यक्ष ने आयरलैंड के सभी पल्लियों को सार्वजनिक मिस्सा समारोहों को वापस आने हेतु तैयार होने की सलाह दी। महाधर्माध्यक्ष मार्टिन ने आयरलैंड में सार्वजनिक धर्म विधि को फिर से शुरू करने के बारे में बातें की। उन्होंने कहा कि विश्वासियों को सामूहिक मिस्सा और ख्रिस्तीय समुदायों के निर्माण की ओर लौटने में सक्षम होने की लालसा है। कोविड 19 महामारी के दौरान पल्लियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए महाधर्माध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि आभासी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में हम सार्वजनिक मिस्सा के माध्यम से हमारे विश्वास को प्रकट करने और समारोह मनाने में सक्षम नहीं होने के कारण दुखित हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह खालीपन विशेष रूप से पुरोहितों द्वारा अनुभव किया गया है। पुरोहितों को सभी विश्वासियों की चिंता है और इसके बावजूद वे खुद उनके पास जाने में असमर्थ हैं, जो उनके बुलावे में सबसे जरूरी है। महाधर्माध्यक्ष के रूप में मैं इस खालीपन को गहराई से अनुभव कर रहा हूँ। महाधर्माध्यक्ष मार्टिन ने इस बात पर जोर देकर कहा कि पिछले हफ्तों में आयरलैंड की पल्लियां स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गिरजाघरों को सभी विश्वासियों के लिए खोलने हेतु तैयारी में जुटी हुई हैं। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को याद दिलाया जब उन्होंने इटली के महागिरजाघरों को विश्वासियों के लिए फिर से खोले जाते समय कहा था, आइए हम उन मानदंडों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें जो नुस्खे हमें प्रत्येक व्यक्ति और लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। और वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने वैश्विक संघर्ष विराम की आग पर उनकी अपील का समर्थन करने के लिए संत पापा फ्रांसिस के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वाटिकन मीडिया के एंड्रिया मोंडा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जोर देते हुए कहा, महामारी से लड़ने के लिए सभी को जागृत होने की आवश्यकता है। घातक वैश्विक के लिए नई एकता और समन्वय की आवश्यकता है। हाल ही में महासचिव गुटेरेस ने कहा, सबसे पहले मैं अपनी वैश्विक युद्ध विराम अपील और संयुक्त राष्ट्र के कामों में संत पापा फ्रांसिस के समर्थन के लिए अपनी गहरी प्रशंसा को नवीनीकृत करना चाहूँगा। उनकी वैश्विक व्यस्तता करुणा और एकता के लिए पुकार उन प्रमुख मूल्यों की पुष्टि करती है जो हमारे काम का मार्गदर्शन करते हैं, मानवीय पीड़ा को कम करना और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देना। जब मैंने युद्ध विराम की अपील शुरू की तो दुनिया भर में संघर्ष करने वाले गुटों के लिए मेरा संदेश सरल था, हमें युद्ध विराम की जरूरत है ताकि हम अपने साझा दुश्मन कोविड 19 पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब तक इस अपील को 115 सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों, 200 से अधिक सिविल सोसाइटी समूहों और अन्य धार्मिक नेताओं द्वारा समर्थन मिला है। मैं एक और अपील का उल्लेख करना चाहूँगा जिसे मैं आवश्यक समझता हूँ, घर में शांति की अपील। जैसा कि महामारी दुनिया में फैल रही है, हम महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की भी खतरनाक वृद्धि को देख रहे हैं। मैंने सरकारों, नागरिक समाज और सभी संस्थाओं से आग्रह किया है जो महिलाओं के बेहतर सुरक्षा के लिए काम करते हैं। मैंने हर धर्म के नेताओं से अपील की है कि वे महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करें और समानता के आधारभूत सिद्धांतों को बनाए रखने में लोगों को प्रेरित करें। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।